पिछली बार हम लोग बहुत ही एक अद्भुत और शक्तिशाली पावरफुल पंक्ति पर रुके थे। ये अंतिम पंक्ति है बुक 3 कैंटो 2 की, द एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर। हिज सोल वॉज फ्रीड एंड गिवन टू हर एलोन। संसार में कई प्रकार की मुक्ति की बात होती है। एक मुक्ति होती है जिसमें जीव एक ऐसी अवस्था में चला जाता है जहाँ से उसका इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना असंभव होता है। एक मुक्ति है जिसमें जीव पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है और ये भी आभास नहीं होता कि वह कौन था जो मुक्त हुआ है, क्योंकि उसके बाद ये चेतना समाप्त हो जाती है। एक मुक्ति है जो मूलतः अज्ञान से मुक्ति, वो अज्ञान जो हमको ये बार बार प्रतीत कराता है कि हम ये शरीर हैं, हम ये मन हैं, हम अपने विचार हैं, भावनाएं हैं। किंतु यहाँ पर एक ऐसी मुक्ति की बात हो रही है जो शायद शास्त्रों में लिखी नहीं गई है, किंतु ये सर्वोच्च मुक्ति प्रतीत होती है। श्री माँ की चेतना में आत्मा का सतत निवास, जीव का पूरी तरह माँ का हो जाना, ये एक ऐसी मुक्ति है जिसमें जन्म के बंधन में उतरकर भी जीव मुक्त रहता है, क्योंकि अंदर वो पूरी तरह जन्म से लेकर मृत्यु और मृत्यु के परे जो कुछ भी है उसके जीवन में घटित होगा वो सब की धुरी श्री माँ के हाथ में होती है। उसके जीवन की नियंता श्री माँ होती हैं। और ऐसे जीव का, ऐसे जीवन मुक्त का क्या कार्य, फिर वो क्या कार्य करेगा, क्या कार्य शेष रह जाता है? क्योंकि स्वयं तो उसने माँ को पा लिया, माँ के अंदर निवास करता है। तो ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कुछ पंक्तियां ऊपर। नाउ अदर क्लेम्स हैड हश्ड इन हिम देयर क्राई। हम लोग भगवान के पास इस चीज को मांगने जाते हैं, उस चीज को मांगने जाते हैं, लेकिन एक समय आता है जब हम भगवान से केवल भगवान को मांगते हैं। फिर जब भगवान भी मिल जाते हैं तब उसके बाद नाउ अदर क्लेम्स हैड हश्ड इन हिम देयर क्राई। ओनली ही लॉन्ग्ड टू ड्रॉ हर प्रेजेंस एंड पावर। श्री माँ की उपस्थिति, श्री माँ की शक्ति जीवन में उतरे, मन प्राण शरीर में उतरे, इस संसार में उतरे, into his heart and mind and breathing frame। आत्म तत्व सतत निवास कर रहा है माँ के अंदर, लेकिन मन प्राण शरीर रूपांतरित नहीं है। उनका कण कण माँ के शक्ति, माँ के प्रेम, माँ के प्रकाश, माँ की शांति, माँ के आनंद में समा जाए और नया बनकर निकले, ऐसी कुछ अभिप्सा अशुपति की है। Only he yearned to call forever down her healing touch of love and truth and joy into the darkness of the suffering world। Ultimately यही ultimate healing है। एक शब्द यूज होता है radical healing। बाकी सब जो healing है वो temporary है और temporary चीज़ों का अपना एक temporary स्थान है, relative स्थान है। हम लोग रोग होता है, दवा लेते हैं, कभी बिना दवा के भी रोग से ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो हीलिंग नहीं है, वो एक टेम्पररी रिलीफ है, क्योंकि रोग की संभावना वैसी की वैसी बनी हुई है। इस वर्ष इस समय हम रोग से मुक्त हो गए, अगले वर्ष कुछ महीनों बाद फिर वही रोग हमारे अंदर आ सकता है। हीलिंग वो होती है जब रोग की संभावना मूलभूत रूप से समाप्त हो जाए, तो वो तभी संभव है जब माँ की शक्ति, सत्य, प्रेम, ज्ञान, आनंद कोशिका तक में उतर जाए। मन प्राण मुक्त रह सकते हैं लेकिन शरीर फिर भी मुक्त नहीं होता। अशुपति की ये अवस्था है और इस अवस्था तक पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया है वो भी एक समराइज है पेज 315 पर। कैसे अशुपति ने इस अवस्था को प्राप्त किया, तो सारी योग यात्रा हम लोगों ने पढ़ी है, लेकिन अंत में अशुपति के विषय में श्री अरविंद क्या कहते हैं, क्या शक्ति थी अशुपति के अंदर, ऐसी कठिन तपस्या जो उनको एकदम सृष्टि के आदि स्रोत तक ले गई, उन्होंने ऐसा क्या किया था, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था, ए वास्ट सरेंडर वॉज हिज ओनली स्ट्रेंथ। एक समय आता है जब हम अपना प्रयास, अपनी चेष्टा, अपनी तपस्या ये सब करके थक जाते हैं और हम जान जाते हैं कि इससे थोड़ा बहुत फेरबदल किया जा सकता है। घर की पेंटिंग की जाती है, की जा सकती है, थोड़ा पैचवर्क किया जा सकता है, लेकिन नया घर नहीं बनाया जा सकता, ये बहुत कठिन कार्य है। तो ये कार्य केवल ए वास्ट सरेंडर, वास्ट सरेंडर, डिटेल्ड सरेंडर, अपनी सत्ता में जो कुछ भी आता है उसके दायरे में उसका सरेंडर। साथ ही ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि यह सत्य, ये ज्ञान, ये प्राप्ति किसी मानवीय तपस्या से संभव है ही नहीं। बट वेन आर ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन लव टू ब्रेक अर्थ सील ऑफ इग्नोरेंस एंड डेथ। ह्यूमन पावर, तपस्या, ह्यूमन लव, भक्ति, ह्यूमन लव भक्ति का उत्कर्ष होता है भक्ति, इनमें भी वो शक्ति नहीं है कि इस सील को तोड़ सकें, अज्ञान की जो जड़ अंत तक हमारे अंदर गई हुई है। हिज नेचर्स माइट सीम्ड नाउ इन इन्फेंट्स ग्रैस्प। अशुपति जैसे तपस्वी की शक्तियां माँ जगत जननी के सामने ऐसे लग रही हैं जैसे बच्चा कुछ पकड़ता है, खेलता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है उनके सामने। हेवन इज टू हाई फॉर आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स टू सीज। दिस लाइट कम्स नॉट बाय स्ट्रगल और बाय थॉट। कितना हम लोग मंथन कर लें, विचार कर लें, सोच लें, विवेक विचार विमर्श कर लें, पढ़ लें, जान लें, इससे ये प्रकाश नहीं आता। कितनी भी हम लोग चेष्टा कर लें, स्ट्रगल, उससे भी नहीं आता, फिर किस चीज से आता है? दिस लाइट कम्स नॉट बाय स्ट्रगल नॉर बाय थॉट। इन द माइंड साइलेंस द ट्रांसेंडेंट एक्ट्स। हमको स्वयं को प्रस्तुत करना है कि भगवान आप हमारे अंदर कार्य करें, हम कार्य करेंगे, कोई ऐसा कार्य करेंगे, चेष्टा करेंगे, तपस्या करेंगे जिससे हम ये अवस्था में चले जाएं, संभव नहीं है। किंतु यदि हम भगवान को कार्य करने दें अपने अंदर तो ये संभव है। इन द माइंड साइलेंस द ट्रांसेंडेंट एक्ट्स एंड द हस्ट हार्ट हियर्स द अनअटर्ड वर्ड। और जब हृदय शांत हो जाता है, जब तक हृदय के अंदर बहुत सारी उत्तेजनाएं, पीड़ाएं, ये सब छिपी हुई हैं, तब तक भगवान प्रतीक्षारत है कि ये सब झाड़ू देके साफ होगा, तब उसके अंदर भगवान का प्रेम, आनंद, माधुर्य आएगा। ये हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था और अब अशुपति तैयार हैं इससे भी बेहतर किसी कार्य के लिए। अब इससे आगे क्या कार्य हो सकता है? और वह कार्य है रूपांतरण, जिसके कारण अशुपति इतनी दूरी उन्होंने तय की है। बुक 3 कैंटो 3 द हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन। हाउस ऑफ द स्पिरिट का अगर ट्रांसलेट करें तो एक ही शब्द है जो बहुत सुंदर आता है, परमात्मा का घर, हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन एवं नवीन सृष्टि। नवीन सृष्टि कैसी है? ये धरती पर लोगों को देखकर, संसार को देखकर, ऋषि मुनियों तपस्वियों के जीवन को देखकर, गुरुकुल आश्रम को देखकर हम नहीं जान सकते, क्योंकि धरती पर सब कुछ मिक्स्ड है। कैसे जान सकते हैं नवीन सृष्टि कैसी है? तभी जब माँ हमको दिखाएं, चैत्य के द्वार से ग्लिम्स हो, तभी हम जान सकते हैं कि परमात्मा का घर कैसा होता है, हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन। कल होली का दिन भी है और बहुत ही सामयिक चीज़ है, क्योंकि वास्तव में सृष्टि का प्रयोजन है एक का अनेक के साथ खेलना, और मनुष्य का भी यही प्रयोजन होना चाहिए कि एकत्व में निवास करते हुए अनेकत्व के साथ खेलें। यही होली का एक्चुअल अर्थ है एक सेंस में, कि अनेक रंगों से खेलना, लेकिन ये जानना कि खेलने वाला एक ही है। और इस पर बहुत सारे सूफी मिस्टिक्स ने लिखा भी है, इवन एक इस्लाम के बहुत बड़े मिस्टिक हुए हैं, और वो कहते हैं कि ऐसा चतुर खिलाड़ी बने, वो अपने को इतने रंगों में छिपा के रखता है लेकिन है खेलने वाला केवल एक। जहीन एक इस्लाम का मिस्टिक हुआ है जो श्री कृष्ण के बारे में लिखते हैं, रहीम ने भी लिखी है इस तरह की बड़ी सुंदर सुंदर बातें कि खेलने वाला एक है, रंग अनेक हैं, और अनेक रंगों से ना घबरा के उनसे खेलना लेकिन एक को पकड़कर ये जानना कि वास्तव में एक खेल रहा है, तो दैट इज़ होली। और ऐसा ही कुछ करने के लिए बहुत पवित्रता चाहिए अपने अंदर, और वो चीज़ होली के पहले वाले दिन होता है होलिका दहन। तो होली खेलने के पहले एक तैयारी होती है, होलिका दहन। होलिका दहन के बारे में कहा जाता है कि आप अपने पास्ट को जला रहे हो, और वो स्टोरी है कि बुआ जल जाती है प्रहलाद की, प्रहलाद जीवित रहता है, और इट इज़ द सेम ट्रूथ ऑफ प्योरिफिकेशन। जब प्योरिफिकेशन परफेक्ट हो जाता है चेतना के अंदर, तब हम भगवान के साथ और भगवान की तरह संसार से होली खेलने के लिए तैयार होते हैं। और यही आशय आने वाली पंक्तियों में है, लेकिन बहुत एक डीपर और प्रोफाउंड लेवल पर। ए माइटियर टास्क रिमेन देन ऑल ही हैड डन, टू दैट ही टर्न फ्रॉम विच ऑल बीइंग कम्स। वह जिससे सब कुछ आया है, श्री माँ आती हैं और जो द्वार पर जो बच्चा खड़ा है उनका अशुपति, वहाँ जाके तो सीयर्स सेजेस भी देवता भी शिशु के समान होते हैं। वो कहती हैं कि आओ तुम अंदर आओ परम। इसीलिए हम देखते हैं कि श्री अरविंद जब हाईएस्ट मंत्र लिखते हैं, ओम आनंदमयी शी द डिलाइट, चैतन्यमयी शी द कॉन्शियसनेस फोर्स, सत्यमयी शी द ट्रूथ परमे सुप्रीम। शी टेक्स अस टू द सुप्रीम, वाह, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते लेकिन सब कुछ उससे निकला है। ए साइन अटेंडिंग फ्रॉम द सीक्रेसी विच नोज द ट्रूथ अनग्रेस्ड बिहाइंड अवर थॉट्स एंड गार्ड्स द वर्ल्ड विद इट्स ऑल सीइंग गेज। इन द अनअप्रोचेबल स्टिलनेस ऑफ हिज सोल इंटेंस वन पॉइंटेड monumental lone patient he sat like an incarnate hope motionless on a pedestal of prayer। लोग अक्सर पूछते हैं दर्शन डे पे कैसा हमारा क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, और श्री अरविंद माता जी ने जगह जगह लिखा है इसके बारे में, क्वाइट रिसेप्टिविटी, खुला रखना कि माँ जो भी दें। यहाँ पर ये चार पंक्तियाँ क्यों? क्योंकि अशुपति परमात्मा के घर में प्रवेश करने वाले हैं, तो जब घर में प्रवेश करने वाले हैं तो उनका अप्रोच क्या है, एटीट्यूड क्या है, अवस्था कैसी है, और ये अशुपति की, नॉट ऑफ सम ऑर्डिनरी मॉटल। इन द अनअप्रोचेबल स्टिलनेस ऑफ हिज सोल, ऑलरेडी उनकी चेतना, उनकी आत्मा एक अति उच्च अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। इंटेंस वन पॉइंटेड मॉन्यूमेंटल लोन पेशेंट ही सैट लाइक एन इनकारनेट होप। इम्पेशेंस, ये साइकोलॉजी भी बड़ी इसमें सूक्ष्म है। इम्पेशेंस कहीं ना कहीं उसके पीछे एक निराशा का टच परस्यू कर रहा है मनुष्य को। और पेशेंट कौन होता है? जो आशावान होता है, क्योंकि वो कभी निराश नहीं होता। अगर कोई चीज़ नहीं हो पाती है एक बार में, कहता है कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करेंगे। दूसरी बार में नहीं हो पाती, फिर से प्रयास करेंगे। क्यों? उसको आशा है ये कि ये चीज़ संभव है। और जिसको आशा नहीं है बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत इम्पेशेंट भी होते हैं। सो पेशेंट ही सैट लाइक एन इनकारनेट होप, बिल्कुल जैसे मानो उन्होंने अपने अंदर आशा को अवतरित किया हुआ है। और आगे अद्भुत पंक्ति, मोशनलेस ऑन ए पेडेस्टल ऑफ प्रेयर, कोई उनके अंदर स्टर नहीं आ रही। इसका एक भारी उदाहरण भी होता है जो मुझे याद आया था एक बार। अक्सर आश्रम इनमेट बनने के लिए 4-5 साल तो एवरेज लगते हैं, एक समय तो बहुत वर्ष लगे थे, कोई कोई 1-2 साल में चले, लेकिन आमतौर पर 4-5 ईयर्स। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती लोगों के मन में, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये है वो है। लेकिन कैसी हमारी अवस्था होनी चाहिए? ये अवस्था होनी चाहिए प्रेयर की अवस्था, पेडेस्टल ऑफ प्रेयर। भगवान की चौखट पर है, कभी ना कभी तो नंबर आएगा और अंदर बुलाएंगे, अच्छा आओ तुम अब हमारे अंतरंग ग्रह में घुसो। दैट शुड बी अवर अप्रोच। कभी कभी इसका एक बहुत ही यूमरस उदाहरण भी होता है, और अभी अभी मैं आश्रम से निकला तो एक होली के दिन ना जोक्स भी कहे जाते हैं, और मैंने जब सुना तो मैंने कहा ये डिवाइन वे ऑफ टेलिंग ए जोक। तो जब बाहर आया तो मैंने एक कन्वर्सेशन सुना, मैं मुड़ रहा था राइट की ओर, मैंने कन्वर्सेशन सुना कि एक युवती अंदर जाने के पहले नेचुरली उनको रोक दिया गया, 7:10 थे, तो किसी से पूछ रही हैं कि अच्छा क्या अंदर जाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा उसने पूछा। तो उस व्यक्ति ने पूछा कौन हो तुम? अब जो उत्तर था अद्भुत था, और उत्तर सुन के मैं मुड़ गया, उत्तर था आदिशक्ति, आदिशक्ति। बिलीव मी आई वाज स्टंड, मुझे विश्वास नहीं हुआ। उसका नाम था आदिशक्ति, ये चांस की बात थी। और मैंने कहा भगवान की महिमा देखिए कि आदिशक्ति आदिशक्ति के घर घर जाने के पहले परमिशन ले रही है। इट इज रियली अमेजिंग, मैंने भगवान कैसे कैसे जोक, सेंस ऑफ ह्यूमर भगवान का इतना अद्भुत हो सकता है। और मुझे ये सुनना था, जैसे ही नाम पूछा कौन है आप तो या कौन हो तुम, कहती आदिशक्ति। एंड आई वॉज शॉक्ड कि वास्तव में, मैंने मुड़ के देखा किसने, मुझे लगा किसी ने एकदम प्रचंड रूप में आकर के बोला मुझे रोकने वाले कौन हो, मैं आदिशक्ति हूँ, लेकिन उनका रियली नाम था आदिशक्ति। तो ये भी होता है तो, लेकिन भगवान के घर में प्रवेश नाम से मिलता तो बहुत आसान होता, हम सब के नाम में कहीं ना कहीं देवत्व जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ तो रियल चीज चाहिए। तो इसलिए अशुपति ऑन ए पेडिस्टल ऑफ प्रेयर, कौन से आसन पे बैठे हैं? ध्यान के आसन पर नहीं। देखिए कितनी अद्भुत चीज है, ध्यान आसन होता है, आसन शरीर की स्टेट नहीं होती है, आसन अंदर की अवस्था है, और अंदर की अवस्था से बाहर की मुद्राएं जन्म लेती हैं। ओरिजिनल ट्रूथ ये है। अब हम लोग केवल बाहर बाहर से करते हैं, अंदर का अवस्था पर ध्यान नहीं देते। तो अशुपति प्रार्थना के आसन पर बैठे हैं, कि हाउ ब्यूटिफुल दिस लाइन इज, पेडेस्टल ऑफ प्रेयर। और उनकी प्रार्थना क्या है? ए स्ट्रेंथ ही शॉर्ट दैट वॉज नॉट येट ऑन अर्थ, एक ऐसी शक्ति, हम लोगों ने पढ़ा था द माइट ऑफ ऑल दैट नेवर येट केम डाउन, वह शक्ति जो आज तक उतरी नहीं। तो ऐसी शक्ति अशुपति मांग रहे हैं जो आज तक धरती पर अवतरित नहीं हुई। अरविंद मृणालिनी देवी को एक पत्र में लिखते हैं, सब कुछ अनुभव करने के बाद मैं जानता हूं कि मेरे अंदर वह सक्षमता है, वह बल है जो इस गिरी हुई मानव जाति को ऊपर उठा सकता है। आई नो दैट आई हैव द स्ट्रेंथ टू लिफ्ट दिस फॉलन रेस। और यही उनकी अभिप्सा थी, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते थे। तभी जब श्री अरविंद जेल में जाते हैं तो उनके मन में एक संशय आता है कि मैंने तो अपने लिए कुछ नहीं मांगा, मैंने तो इस मानव जाति के लिए, भारत भूमि के लिए सब कुछ मांगा, फिर मुझे सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान की गई? जैसे हम लोग कई बार ऐसा पूछते हैं कि हम तो आपका काम कर रहे हैं माता जी, तो मैं क्यों बीमार पड़ा? तो ये अशुपति श्री अरविंद वहां पूछते हैं कि मुझे क्यों जेल में आना पड़ा, और तब उनको वाणी सुनाई देती है, वेट एंड सी। तो यहां पर वो भाव है, ए स्ट्रेंथ ही सॉट दैट वाज नॉट येट ऑन अर्थ, हेल्प फ्रॉम ए पावर टू ग्रेट फॉर मॉर्टल विल। हम लोग कहते हैं भगवान की शक्ति, भगवान की शक्ति, भगवान सहायता करो, हेल्प, लेकिन क्या हम उस शक्ति का संवरण कर सकते हैं? सबसे बड़ी कठिनाई ये है। श्री अरविंद कहते हैं कि मैं अपनी सुपरामेंटल पावर को यूज नहीं करता हूं, क्यों? क्योंकि तहस नहस हो जाएगा संसार। तो ज्यादातर इवेंट्स में इंक्लूडिंग वर्ल्ड वार टू श्री अरविंद ने अपनी ओवर माइंड शक्ति का ही प्रयोग किया था, क्योंकि अगर वो सुपरामेंटल पावर को यूज करते तो मनुष्य तैयार नहीं है. हेल्प फ्रॉम ए पावर टू ग्रेट फॉर मॉर्टल विल, द लाइट ऑफ ए ट्रूथ नाउ ओनली सीन ए फार. एक जगह श्री अरविंद कहते हैं कि यदि वेद वेदांत तंत्र पुराण इत्यादि मुझे सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो क्यों, मैं क्या खोज रहा हूं. तो कहते हैं आई सीक फॉर ए लाइट दैट इज मोस्ट एंशियंट ऑफ द एंशियंट येट न्यूएस्ट ऑफ द न्यू, जो पुरातन से भी पुरातन है, ओरिजिनल लाइट, और नई से नहीं क्योंकि धरती पर वो अब तक प्रकट नहीं हुई. फिर आगे लिखते हैं अपने पत्र में एक कि जहां तक मेरा मानना है और जो मैंने जाना है वह ये कि एक एवरेज वेदांतिन जो वेदांत के सत्य को प्राप्त कर चुका है वो मात्र केवल भगवान के वस्त्र के हेम को, वस्त्र खंड के उसके बाहरी किनारे को ही छू पाता है, और एक भक्त भगवान की कौस्तुभ मणि का ही दर्शन कर पाता है, उनके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता. तो ए लाइट दैट इज नाउ द लाइट ऑफ ए ट्रूथ नाउ ओनली सीन अफार, ए सैंक्शन फ्रॉम द हाई ओमनीपोटेंट सोर्स, बट फ्रॉम द अपॉलिंग हाइट्स देयर स्टूप्ड नो वॉइस, द टाइमलेस लिड्स वेयर क्लोज नो ओपनिंग केम, ए न्यूट्रल हेल्पलेस वॉइड ऑप्रेस्ड द ईयर्स. कितने बरस श्री अरविंद इस अवस्था में रहते हैं, वो जान गए हैं सुपरामेंटल ट्रूथ, इसका द्वार ये खुलेगा तो सब कुछ चेंज होगा. एक मंदिर है, मैं भूल गया कहाँ का, मैंने देखा था टेलीविजन पे, शायद बेंगलोर में कहीं पर एक मंदिर है जहाँ पूरे साल में केवल मकर संक्रांति के दिन 2 घंटे के लिए केवल प्रकाश आता है, इस तरह से उसका डिज़ाइन किया गया है, और पूरे साल वहाँ पे फिर आर्टिफिशियल लाइटिंग. तो उस प्रकार से जैसे चातक प्रतीक्षा करता है स्वाति नक्षत्र की कि उसी में 2.5 मुहूर्त के लिए आती कि उसकी बूंद से मैं संतुष्ट होऊंगा, तो वैसे अशुपति प्रतीक्षा कर रहे हैं और कई कई वर्ष गुजर रहे हैं ऐसे. द टाइमलेस लिड्स वेयर क्लोज्ड नो ओपनिंग केम, ए न्यूट्रल हेल्पलेस वॉइड ऑप्रेस द ईयर्स, इन द टेक्सचर ऑफ आर बाउंड ह्यूमैनिटी ही फेल्ट द स्टार्क रेजिस्टेंस ह्यूज एंड डम्ब ऑफ आर इनकॉन्शियंट एंड अनसीइंग बेस, द स्टबर्न म्यूट रिजेक्शन इन लाइफ स्टेप्स द इग्नोरेंट नो इन द ओरिजिन ऑफ थिंग्स. तो उन्होंने महसूस किया कि क्यों ये द्वार क्यों नहीं खुल रहा है, क्यों नहीं, मैंने तो माँ का दर्शन कर लिया है, अंदर मुझे मेरी प्रार्थना के साथ प्रवेश क्यों नहीं मिल रहा है. बाद में पता चलेगा कि अशुपति को क्यों प्रवेश नहीं मिल रहा था, ये काफ़ी बाद में बुक 3 Canto 4 में आएगा, जब वो उनको प्रवेश मिलेगा, सब दिखाया जाएगा और कहा जाएगा कि तुम्हें तो प्रवेश है किंतु तुम ये सारे संसार को जो लेकर आना चाह रहे हो इसलिए प्रवेश वर्जित है. नो सोल इज thy companion इन द लाइट, अलोन thou stands इन द eternal doors. तो अशुपति तो पूरे संसार की अभिप्सा लेके जा रहे हैं, तो उनको प्रतीक्षारत, और तब वो देखते हैं कि संसार में कितना रेजिस्टेंस है उनके अपने बीइंग में. जैसा कि हम लोग थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि जब श्री अरविंद अलीपुर जेल जाते हैं उसके समय ऑलरेडी उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है और अनेकों अनुभव उनके साथ हो चुके हैं, फिर भी उनके मन में एक डाउट आता है उस समय कि मुझे क्यों जेल हुई, मुझे क्यों, मुझे तो पूर्ण सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, मैंने तो निस्वार्थ भाव से अपने लिए कुछ नहीं मांगा. तो ये छोटे छोटे रेजिस्टेंस जो अवचेतन में घुसे होते हैं, अचानक अशुपति उन सबको देखते हैं. द स्टबर्न म्यूट रिजेक्शन इन लाइफ डेप्थ, हमारी अंतरात्मा तो चाहती है परंतु बाकी तत्व नहीं चाहते. द इग्नोरेंट नो, कितनी अद्भुत लाइन है, इग्नोरेंट नो, हम अगर जान जाएं कि वो कैसा आनंद है भगवान का तो हम कभी नो नहीं करेंगे, लेकिन यहां इग्नोरेंस की नो है, नहीं जानते हम, नहीं जानते कि माँ जो दे रही हैं और देने वाली हैं और जिसके लिए हमें तैयारी हेतु प्योरिफिकेशन के फायर से ले जा रही हैं। जिस दिन हमें ज्ञात हो जाएगा कि अच्छा ये इसके लिए है, तो हम कहेंगे यस यस यस, सब पीड़ा स्वीकार है, लेकिन हमको मालूम नहीं है तो हम घबराते हैं, कतराते हैं, भगवान के स्पर्श से दूर भागते हैं और इग्नोरेंट नो। ए वेल्ड कोलेबोरेशन विद द नाइट, बाहर से देख के नहीं प्रतीत हो रहा है, लगता है सब कुछ तो तैयार है भगवान के लिए, लेकिन कोई चीज है जो छिपी हुई है, जो रात्रि के साथ मिली हुई है। डिस्पेयर का भाव, कभी कभी वो ऐसा भाव ले लेता है, वैराग्य का भाव, ऐसा भाव लेकर भी माता जी के पास, माँ श्री अरविंद के पास इस तरह के भाव से भी, और माँ कहती थी कि इसके भीतर डिस्पेयर छिपा है और वैराग्य का भाव ले रहा है, संसार तो क्या है। इट कैन टेक सो मेनी फॉर्म्स वेल्ड, इसीलिए इस कोलेबरेशन, रात्रि कितने रूप से हम लोगों को मुखौटा पहनकर आती है। इवन इन हिमसेल्फ सर्वाइव्ड एंड हिड फ्रॉम हिज व्यू, स्टिल समथिंग इन हिज अर्थली बीइंग केप्ट इट्स किनशिप विद द इनकॉन्शियंट व्हेंस इट केम। हमारा आत्म तत्व तो भगवान से आया है, परंतु प्रकृति का गठन अंदर निश्चेतना में उससे निकल करके ऊपर आता है, तो ये दोनों जब मिलते हैं तो डेडली कॉम्बिनेशन होता है, सदैव लड़ाई होती रहती है और अलग नहीं हो सकते क्योंकि एक दूसरे के ये पूरक हैं, पुरुष एंड प्रकृति। तो अपने ही अंदर अश्वपति देखते हैं कि अब भी निश्चेतना के बीज, अभी भी रूट्स वहाँ पर एंटेंगल्ड हैं, और क्या देखते हैं साथ ही, इस शेडोई यूनिटी विद ए वैनिश्ड पास्ट, ट्रेजर्ड इन एन ओल्ड वर्ल्ड फ्रेम वॉज लर्किंग देयर। ओल्ड वर्ल्ड फ्रेम, नया जगत किसी पुराने फ्रेम्स पर आधारित नहीं है, कई सारे फ्रेम, एक फ्रेम ले लेते हैं हम लोग के भगवान की, जो मन में एक ख्याल आता है, मंदिर, मंदिर में जाकर के एक घंटा होगा, एक दिया होगा, एक देवता होंगे जिनके सामने हम लोग प्रणाम करेंगे, ये ओल्ड वर्ल्ड फ्रेम है। माता जी इसके बारे में कहती हैं, एक फिल्म देखी थी उन्होंने रानी रासमणि, जिसमें श्री राम कृष्ण के जीवन पर कहानी थी, तो सारा घंटी और ये सब पूजा, माँ कहती हैं साफ लगा कि ये पुराना जगत है जो अब समाप्त हो गया है। लेकिन देखिए कैसे लोगों के अंदर ओल्ड वर्ल्ड फ्रेम होता है। आश्रम में आने के बाद भी, माता जी श्री अरविंद के बाद भी, लगता है कहीं गणेश मंदिर में नहीं गए तो पाप ना हो जाए, रुष्ट ना हो जाए गणेश जी। अरे जिस पर माँ प्रसन्न है तो उनके बच्चे कैसे रुष्ट होंगे, वो तो खुश होंगे कि माँ के पास है। लेकिन ये दिमाग में, कोई मंदिर ना छूट जाए, फिर आश्रम में जाते हैं तो वहाँ कोई घंटी नहीं है दरवाजे पर जिसको कर सकें, कोई दिया बत्ती नहीं है, एक अगरबत्ती वो भी बड़े ऐसे दी जाती है जैसे कोई कंजूस, एक दे दी अभी उसके आगे आप नहीं ले सकते, और इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओल्ड वर्ल्ड फ्रेम का पहले भी एक था, जब ये समाधि का नव निर्माण हुआ था श्री अरविंद के पाशर में जाने के बाद, माता जी तो थी उस समय, अभी भी हैं पर भौतिक शरीर की बात हो रही है बाहरी, तो कुछ लोगों ने अब देखा कि अब फाइनली हम लोगों को मौका मिला है, तो पहले तो उन्होंने साष्टांग इस तरह लेट करके प्रणाम शुरू किया, तो कुछ लोगों ने कहा बड़ा इनकन्वीनियंट होता है, माता जी ने कहा कोई बात नहीं है। फिर एक दिन एक व्यक्ति लेके नारियल लेके आया, उसने नारियल फोड़ा, रियल स्टोरी है, तो नारियल फोड़ा तो जब बताया गया तो माने कुछ कहा नहीं क्योंकि अभी क्या बोले, फिर रोज एक के बाद और नारियल, देन मदर हैड टू स्टॉप इट कि नहीं ये बंद करो, ये ओल्ड वर्ल्ड फ्रेम है कि नारियल आप फोड़ जाओ, अपने ईगो का नारियल फोड़ो तो उसके अंदर से कुछ सुंदर प्रेम निकले, लेकिन वो नारियल तो नहीं फोड़ेंगे, हम लोग बाहर से एक नारियल खरीद के जरूर फोड़ देंगे, वो आसान है। तो दैट इज द ओल्ड वर्ल्ड फ्रेम, ये सब ओल्ड वर्ल्ड फ्रेम है। इवन द ओनली थिंग विच इज मोस्ट ब्यूटिफुल इज फ्लावर, लेकिन वो भी एक भाव के साथ, जब हम अगरबत्ती तो एक अभिप्सा के साथ, देन इट बिकम समथिंग ब्यूटिफुल। वहाँ हम ओल्ड वर्ल्ड फ्रेम को भी नए उसके लिए यूज कर रहे हैं, सो दैट इज द होल ब्यूटी ऑफ दिस न्यू क्रिएशन। तो अश्वपति देखते हैं कि उनके अंदर भी ओल्ड वर्ल्ड फ्रेम कहीं ना कहीं पर है, सीक्रेट अननोटेड बाय द इल्यूमिन माइंड, इवन ऋषि तुल्य मन देख नहीं पा रहा है उसको, एंड इन सबकॉन्शियस विस्पर्स and in dream still murmured at the mind's and spirit's choice. और वो कब जागृत होता था अशुपति के अंदर? कभी कभी स्वप्न में. हम लोग जब किसी चीज को बाहर से रिजेक्ट कर देते हैं तो हम लोग को लगता है कि हमने उसको थ्रो कर दिया, लेकिन वो पहले एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस में रहती है, तो कभी भी उससे वापस आ सकती है. रोग के साथ भी ऐसा होता है. फिर उसके बाद जब हम वहाँ से भी थ्रो करते हैं, अवचेतन में चली जाती है. तो अवचेतन में रहती है तो कब आती है? स्वप्न में आती है. ऑफकोर्स जब हम सचेत होते हैं स्वप्नों के. वहाँ पर अशुपति ये चीज़ें देख रहे हैं. स्टिल मर्मर्ड एट द माइंड्स एंड स्पिरिट्स चॉइस, इट्स ट्रेचरस एलिमेंट्स स्प्रेड लाइक स्लिपरी ग्रेन्स, होपिंग द इनकमिंग ट्रूथ माइट स्टम्बल एंड फॉल. जैसे एक गाड़ी आ रही है या कोई व्यक्ति भागता भागता आ रहा है, तो ये अक्सर दिखाया जाता है ना, कोई बहुत होशियार व्यक्ति, वो अपने पॉकेट में कुछ मार्बल लिए हुए गोली, और कोई भाग के उसका पीछा कर रहा है, तो क्या करता है? वो मार्बल्स को फेंक देता है. तो तेज गति से आ रहा है, एक मार्बल पर पाँव रखता है और स्लिप करके गिर जाता है, अपना माथा फोड़ लेता है. तो इस प्रकार से जो ट्रूथ और प्रकाश आ रहा है उसके सामने वो पुरानी चेतना, पुरानी प्रकृति ऐसे स्लिपरी ग्रेन्स डाल देती थी, बिखेर देती थी कि वो गिर जाए, स्टम्बल कर जाए. देखिए शेरविन की इमेजेस कितनी सुंदर हैं, यानी कैसे उन्होंने ये सब कंसी ये माइंड में ये इमेज बहुत ही मॉडर्न इमेज भी है, लेकिन हाउ ही हैज सीन ऑल दिस एंड ओल्ड आइडियल वॉइसेस wandering moaned and pleaded for a heavenly leniency to the gracious imperfections of our earth and the sweet weaknesses of our mortal state. साथ में ओल्ड आइडियल. ओल्ड आइडियल क्या था? सब लोग आपस में भाईचारा है, प्रेम बंधुत्व है, लेकिन कौन सा प्रेम बंधुत्व? जो बाहर बाहर से बड़ा अच्छा है, स्वीट टॉक, गुड मैनर्स, और अंदर में जो कलुष है, जो ईगो है, जो डिजायर सेल्फ है, उसके बारे में अरे थोड़ा बहुत तो चलता है, मनुष्य हैं हम लोग, भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब तो पार्ट एंड पार्सल है. और ये ऐसे ऐसे रूप ले लेता है. एक जगह बहुत आश्चर्य हुआ था मुझे, एक सज्जन मिले और उनका परिचय कराया गया कि ये इस मंदिर के में इनका बहुत विशेष वो है, और बड़े खुश हो रहे थे इस बात से वो कि ये रोज मंदिर को खोलते हैं और बंद करते हैं. और फिर उन्होंने बताया 25 वर्षों से मैं दिन रात यही काम कर रहा हूँ. मुझे लगा ये कमाल है, ये भी बहुत अच्छी, माने उसका भी एक इतना भयंकर ये हो सकता है, ईगो के कितने रूप हो सकते हैं, यही मैं खोलता हूँ. ये हेवेंस लीनियंसी, छोटी मोटी चीज़ें हैं, इतना ईगो तो चलता है, भगवान की सेवा का ईगो है उसमें क्या है? हेवेंस लीनियंसी, ग्रेशियस इम्परफेक्शंस, भगवान ये तो थोड़ा पिकनिक तो अलाउड है, सो इट्स लाइक दैट. पिकनिक में थोड़ा बहुत वाइटल इंटरचेंज तो अलाउड है, उसमें क्या है, ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. तो इस तरह से ऑल लाइफ इज योगा, सो हेवेंस लीनियंसी. नाउ एक अवस्था है चेतना की जिसमें ये सब संभव है, लेकिन उसके पहले ये जो अवस्था होती है जहाँ व्यक्ति स्वयं से ही झूठ कहता है, वह अशुपति अब अपने अंदर देख रहे हैं. और जब वो ये देखते हैं तब उनके अंदर क्या भाव उठता है. दिस नाउ ही विल्ड टू डिस्कवर एन एग्जाइल द एलिमेंट इन हिम बिट्रेइंग गॉड. अब अशुपति ने जब उसको देख लिया तब उनके अंदर एक ऐसी भिप्सा उठती, नहीं मेरे अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए जो माँ के प्रेम, माँ के करुणा, माँ के प्रकाश, माँ की शक्ति, माँ की शांति, माँ के आनंद को वहन करने के रास्ते में आए, उस मार्ग में बाधक बने. ये अंदर सब कुछ ही अंदर का खेल है, कोई चीज़ बाहर नहीं है. देखिए अद्भुत बात यह है कि अशुपति बाहर की किसी चीज़ की नहीं बात कर रहे हैं कि ओ मैं अपना घर है उसको तोड़ देता हूँ, मेरे सगे संबंधी छोड़ देता हूँ, नहीं, वो अंदर देख रहे हैं कि मेरे अंदर उसकी कहाँ पर चीज़ें हैं जो इम्परफेक्ट हैं और उसको उनको समाप्त करना है. ऑल नेचर्स रिकॉन्डाइट स्पेसेस वेयर स्ट्रिप्ड बेयर ऑल हर डिम क्रिप्ट्स एंड कॉर्नर्स सर्च्ड विथ फायर where refugee instincts and unshaped revolts could shelter find in darkness sanctuary against the white purity of heaven's cleansing flame. तो अब उन्होंने क्या किया, वो सर्च लाइट ली जो उनके अंदर है और उससे अपनी ही प्रकृति के अंदर एक एक कोने को देख रहे हैं. हम लोग जैसे दूसरों के अंदर एक एक कोने को देख कर कहते हैं, देखा वो जो था वो गलत था, अश्वपति वैसे अपने एक एक कोने को देख रहे हैं कि मेरे अंदर क्या क्या इम्परफेक्शंस हैं, मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो सत्य और प्रेम और प्रकाश, दिव्य प्रेम दिव्य प्रकाश के अनुरूप नहीं है, दिव्य माधुरी के अनुरूप नहीं है, दिव्य आनंद के अनुरूप नहीं है, कौन सी चीज़ें हैं. तो वो एक एक चीज को देख रहे हैं. All seem to have perished that was undivine. तो वो देखते हैं, अरे कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, जो कुछ भी अनडिवाइन था वो तो चला गया है. लेकिन फिर भी येट सम माइन्यूटेस्ट डिसिडेंट माइट एस्केप एंड स्टिल ए सेंटर लर्क ऑफ द ब्लाइंड फोर्स फॉर द इनकॉन्शियंट टू इज इन्फिनिट. The more its abysses we insist to sound, the more it stretches endlessly. किंतु फिर भी ऐसा संभव है कि कुछ चीज़ें छूट गई हों. क्यों छूट गई हों? वो इनकॉन्शियंट में छिपी हैं और इनकॉन्शियंट इन्फिनिट है, उसी की शेडो. इस योग की एक मूलभूत समस्या है. श्री अरविंद कहते हैं कि बाकी योगों में व्यक्ति को केवल अपनी प्रकृति से थोड़ा बहुत जूझना होता है, वो भी रूपांतरण नहीं है तो सात्विक यम नियम इत्यादि करके यू कैन मॉडिफाई द नेचर ताकि आत्मतत्व एस्केप कर सके. लेकिन रूपांतरण के योग में चूंकि हम अकेले, हमारी चेतना विस्तारित हो जाती है, तो केवल हम अपनी प्रकृति का बोझ नहीं उठाते किंतु एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उस प्रकार की, उस प्रवृत्ति का, विश्व प्रकृति का बोझ उठाते हैं. तो केवल इतना नहीं कि हमारा नीच का डिफेक्ट, हमारा नीच का डिफेक्ट मानो उसके रूप में सारे संसार का वह डिफेक्ट हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाता है उसके पूरे समापन के लिए, रूपांतरण के लिए. तो हर एक व्यक्ति जो इस योग में चलता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव, उसको केवल अपना नहीं, उन सब का भी समस्या, प्रॉब्लम्स, डिफेक्ट अपने अंदर उठाना पड़ता है, वहन करना पड़ता है, क्योंकि यही वह कार्य है. तो कुछ हैं जो कुछ नहीं करते और कुछ हैं जिनको बाकी सब का करना पड़ता है, या सच ऐसे कहें अधिकांश हैं जो कुछ नहीं करते और कुछ हैं जो इस योग में जुड़े हैं वो बाकी सब के लिए उनको ये कार्य करना पड़ता है. तो अश्वपति यहाँ पर बताते हैं इनकॉन्शियंट इज इन्फिनिट. जितना उसको हमको लगेगा हमने हटा दिया, फिर उसके नीचे से एक और पॉइजन बबल आएगी, फिर लगा अब ये साफ हो गया, फिर ये आएगी, ऐसा हजारों हजारों बार चलता रहता है. तो अब अश्वपति अपने अंदर एक अल्टीमेट डिवाइन सर्जरी करते हैं, रेडिकल सर्जरी. सर्जरी का भी स्थान है यहां पर. देन लेस्ट ह्यूमन क्राई शुड स्पॉइल द ट्रूथ ही टोर डिजायर अप फ्रॉम इट्स ब्लीडिंग रूट्स एंड ऑफर टू द गॉड्स द वेकेंट प्लेस. देखिए ये मुझे इसका एक वो क्षण याद आता है जब माता जी आने के बाद जा रही होती हैं. ये स्पष्ट हो गया था कि माँ ही श्री अरविंद की शक्ति हैं और ये भी स्पष्ट था कि वो दोनों को साथ काम करना है. माँ जा रही हैं किंतु श्री अरविंद एक क्षण के लिए भी उनको ना रुकने को कहते हैं, ना कोई इशारा भी इस दिशा में करते हैं. और माता जी को बहुत पीड़ा होती है इससे, बहुत पीड़ा होती है. जैसे ही वो जाती हैं पौंडीचेरी से, उनकी प्रार्थना पढ़िए, सॉलिट्यूड, हार्श, इंटेंस, इमेंस सॉलिट्यूड, हार्श सॉलिट्यूड. कैसा एकाकीपन है, कैसा अकेलापन है, मानो मुझे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया है, मानो मुझे सर्वोत्तम का स्पर्श अमृत फल को चखने के बाद फिर से अंधकार में ढकेल दिया गया है माता जी. और माता जी से जब किसी ने पूछा आप क्यों नहीं रुकी, मैं बिल्कुल तैयार थी, मुझे प्रतीक्षा थी केवल एक बार श्री अरविंद कह दें तुम रुक जाओ. शी वॉज रेडी. पर देखिए सरेंडर, माँ का श्री अरविंद के प्रति समर्पण. हम लोग कितने अधीर हो जाते हैं कि नहीं, वो जानते हैं, यदि वो नहीं कह रहे तो नहीं रुकूंगी. पूछ नहीं रही है माँ, समर्पण. और श्री अरविंद का देखिए, उस समय पूरी तैयारी नहीं है, कहीं ना कहीं कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए देन लेस्ट ह्यूमन क्राई स्पॉइल द ट्रूथ ही टोर डिजायर अप फ्रॉम इट्स ब्लीडिंग रूट्स एंड ऑफर्ड टू द गॉड्स द वेकेंट प्लेस. अभी वे स्वयं को तैयार नहीं मानते परम माँ का पूर्ण स्पर्श पाने के लिए. दस कुड ही बेयर द टच इमैकुलेट. ये इमैकुलेट शब्द वास्तव में जगत जननी माँ के साथ ही जुड़ा है. एक कहानी है बाइबल में इमैकुलेट कंसेप्शन की. तो लोग सोचते हैं इमैकुलेट कंसेप्शन जीसस क्राइस्ट माँ मेरी के अंदर धारण हुए थे, उसको इमैकुलेट कंसेप्शन कहा जाता है. ये गलत धारणा है. कई क्रिश्चियंस को भी इसके बारे में ये धारणा है. इमैकुलेट कंसेप्शन कहा जाता है माँ मेरी का अपनी फिजिकल मदर के अंदर जन्म को. और ऐसा कहा जाता है ठीक बुद्ध की तरह वे जन्म से ही स्टेनलेस थीं, प्योर थीं, और उनके अंदर बिल्कुल पाप का कोई लेश मात्र अंश नहीं था. तो निष्पाप, निष्कलंक, जिन शब्दों से हम लोग सुप्रीम को डिस्क्राइब करते हैं, वह अवस्था जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक हम उस स्पर्श को टच नहीं कर सकते. वो समाप्त कर देगा, जलाकर राख कर देगा. एक लंबे समय तक माँ दूर रहकर हम लोगों को तैयार करती हैं, और जब तैयारी होती तब उनका टच, क्योंकि इट इज़ ए वेरी पावरफुल टच. सो यहाँ पर अशुपति अपने अंदर से डिज़ायर को निर्मूल कर देते हैं. ब्लीडिंग रूट्स. हम लोग पढ़ते हैं अक्सर कि जब चंडी का यज्ञ होता है, ये जो जगह है यहाँ महाचंडी का यज्ञ होता है, तो जब चंडी का यज्ञ होता है तो अंतिम आहुति किस चीज़ की चढ़ती है? वो रक्त की चढ़ती है. और अक्सर लोग सोचते हैं ये काट करके खून चढ़ा देना. इट इज़ नॉट दैट. ब्लीडिंग रूट्स, अहंकार और कामना किए रूट्स तक खींच करके, और वो दुख देंगे, पीड़ा देंगे, कष्ट देंगे, ब्लीड करेंगे. और जब वह रक्त चंडी के यज्ञ में पड़ता है तब हम तैयार होते हैं टू बेयर द टच इमैकुलेट. ही टोर डिजायर अप फ्रॉम इट्स ब्लीडिंग रूट्स एंड ऑफर्ड टू द गॉड्स द वेकेंट प्लेस. दस कुड ही बेयर द टच इमैकुलेट. यहाँ हम लोग रुकेंगे और अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे. सो ये होली का पहला दिन है. तो अगर हम लोग भी ऐसे कुछ कुछ कर सकें ताकि कुछ रूट्स को डाल दें अग्नि में, तो नेक्स्ट डे भगवान के रंग में रंगने के लिए तैयार हो जाएंगे.